ಸ್ವಾಹಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮೀತಿ ನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತ್ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾದೇಶತಾರಿಣೆ ನಮೋ ಮಹಾವದಾನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರತ್ವಿಷೇ ನಮಃ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತಿ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಸಾದಿ ಗೌರ್ಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಮರ್ತ್ಯಾವತಾರಸ್ತ್ವಿಹ ಮರ್ತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ರಕ್ಷೋ ಬಧಾಯೈವ ನ ಕೇವಲಂ ವಿಭೋ. ಕುತೋನ್ಯಥಾ ಸ್ಯಾದ್ ನಮತಃ ಸ್ವಯಾತ್ಮನಿ ಸೀತಾ ಕೃತಾನಿ ವ್ಯಸನಾನೀಶ್ವರಸ್ಯ. ಇಹಾ ಇಸ್ ಪ್ರಾಕೃತ ಜಗತ್ ಮೇ ಮರ್ತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯೋ ಕೋ ಶಿಕ್ಷಾ ದೇನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹೋತಾ ಹೈ. ರಕ್ಷೋ ಬಧಾಯ ರಾಕ್ಷಸ ರಾವಣ ಕಾ ವಧ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಏವ ಹಿ ನಾ ಕೇವಲ ಕೇವಲ ವಿಭೋ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಕುತಃ ಕೈಸೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯದಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೋ ಶಿಕ್ಷಾ ನಹಿ ದೇನಿ ಹೋತಿ ತೋ ಸ್ಯಾತ್ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ರಮತಃ ಸ್ವಯಾತ್ಮನಃ ಅಪ್ನೆ ಸ್ವರೂಪ ಮೇ ಹಿ ರಮಣ ಕರ್ನೆ ವಾಲೆ ಆನಂದ ಮೇ ಮಗ್ನ ರಹನೆ ವಾಲೆ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಸೀತಾ ಕೃಪಾನಿ ಸೀತಾ ಕೆ ವಿಯೋಗ ಮೇ ಉತ್ಪನ್ನ ವ್ಯಸನಾನಿ ಅನೇಕ ದುಃಖ ಹೈ. ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಜೊ ಸಬ್ಕೆ ನಿಯಂತಾ ಹೈ ಉನ್ಕೋ ಕುತಃ ಸ್ಯಾತ್ ಕೈಸೆ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಅನುವಾದ ಔರ್ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜೀ ಕೇ ದ್ವಾರಾ. ರಾಕ್ಷಸೋ ಕೇ ನಾಯಕ ರಾವಣ ಕೋ ಯಹ ವರ ಪ್ರಾಪ್ತ ಥಾ ಕಿ ಉಸ್ಕಾ ವಧ ಮನುಷ್ಯ ಹಿ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೋ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ ಧಾರಣ ಕರ್ನ ಪಡಾ. ಕಿಂತು ಭಗವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ರಾವಣ ಕಾ ವಧ ಕರ್ನ ಹಿ ನಹಿ ಥಾ. ವೇ ತೋ ಮರ್ತ ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಕೋ ಯಹ ಶಿಕ್ಷಾ ದೇನಾ ಚಾಹತೆ ಥೆ ಕಿ ವಿಲಾಸ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ಕೆ ಚಾರೋರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ ಭೌತಿಕ ಸುಖ ಸಮಸ್ತ ದುಃಖೋ ಕಾ ಕಾರಣ ಹೈ. ವೇ ಸ್ವಯಂ ಮೇ ಪೂರ್ಣ ಹೈ ಔರ್ ಉನ್ಹೇ ಕಿಸಿ ಭೀ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಪಶ್ಚಾತಾಪ ನಹಿ ಹೈ. अतः भला वे माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट भोगते। तत्पर्य, जैसा कि भगवत गीता 4:9 में कहा गया है, इस विश्व में श्री भगवान के अवतार के दो कारण हैं, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम्। असुरों का वध है करने और अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु। भक्तों की रक्षा करने के लिए वे न केवल अपनी उपस्थिति से वरन भक्ति पर दृढ़ रहने वाले की शिक्षा रहने वाले को शिक्षा देकर उन्हें तुष्ट करते हैं। भगवान रामचंद्र ने अपने भक्तों को यह शिक्षा दी कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने से ही सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसा कि भागवतम में 7:9-45 में पुष्टि की गई है, जन्मय थुनाद गृहमेध सुखम इतुच्छम कंडू यने न करे और यह दुख दुखम त्रिप्यंत नेह कृपणा बहु दुख भाज कंडू तिमन मन सजम विषहेत धीर। आत्मज्ञान में समुन्नत न होने वाले कृपण जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत हैं, गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हैं और पुनः पुनः इंद्रिय सुख भोगते हैं, यद्यपि इस इंद्रिय सुख के पश्चात उन्हें नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। भक्तों के लिए यह पूर्व सूचना है। भक्तों को तथा सारे मानव समाज को शिक्षा देने के लिए ही श्री रामचंद्र ने श्री भगवान होते हुए भी नाना प्रकार के कष्टों को सहे, क्योंकि माता सीता को उन्होंने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। निसंदेह उन्होंने सारे कष्ट इसलिए झेले कि हमें शिक्षा मिले। वास्तव में उन्हें दुख उठाने का कोई प्रयोजन नहीं था। भगवान की शिक्षाओं का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि एक बार अपनी पत्नी कर लेने के बाद मनुष्य को सत्यनिष्ठ होकर पत्नी की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। मानव समाज में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, वे जो धार्मिक नियमों का पालन करते हैं तथा वे जो भक्त हैं। भगवान रामचंद्र अपने चरित्र से इन दोनों प्रकार के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार धार्मिक नियमों का पालन करते हुए प्रिय तथा कर्तव्यनिष्ठ पति बना जा सकता है, अन्यथा भगवान राम को इतने कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। धार्मिक नियमों का पालन करने वालों को चाहिए कि वे अपनी पत्नी की रक्षा करने में उपेक्षा न करें। हो सकता है कि ऐसा करने में कुछ कष्ट उठाने पड़े, किंतु सत्यनिष्ठ पति का यही कर्तव्य है। अपने साक्षात दृष्टांत से भगवान रामचंद्र ने कर्तव्य का प्रदर्शन किया। भगवान रामचंद्र चाहते तो अपनी इच्छा शक्ति से हजारों सीताएं उत्पन्न कर सकते थे, किंतु सत्यनिष्ठ पति का कर्तव्य निभाने के लिए न केवल रावण से सीता की रक्षा की, वरन रावण का सब परिवार संहार किया। भगवान रामचंद्र की शिक्षाओं का एक पक्ष यह भी है कि भगवान विष्णु तथा उनके भक्तों को भले ही सांसारिक जतनाएं झेलनी पड़े, किंतु इनका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे तो मुक्त पुरुष हैं। इसीलिए चैतन्य भागवत में कहा गया है, जत देखो वैष्णव व्यवहार दुख निश्चय जानी है तहा परमानंद सुख। भक्ति में मग्न रहने के कारण वैष्णव सदैव दिव्य आनंद का लाभ उठाता है। भले ही ऐसा लगे कि उसे भौतिक कष्ट है, किंतु उसे दिव्य विरह अवस्था प्राप्त रहती है। प्रेमी तथा प्रेमिका को भले ही बीजोग कष्टकर लगता है, किंतु वास्तव में वह होता है अत्यंत आनंददायक। अतः सीता के से भगवान रामचंद्र का बीजोग तथा उसके बाद उनके द्वारा भोगी जाने वाली जतनाएं एक प्रकार से उनके दिव्य सुख को प्रकट करने वाली है, ऐसा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अभिमत है। तो किम पुरुष वर्ष में थोड़ा सा सब नीचे करना चाहिए, हो गया ठीक। श्री सुखदेव गोस्वामी जम्बू द्वीप के अनेक वर्षों का वर्णन किए हैं, तो उसमें वे किम पुरुष वर्ष का वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवतम में दिखाया गया है कि प्रत्येक लोक में भगवान विष्णु आराध्य हैं, सब जगह भक्त भरे पड़े हैं, केवल नॉन डिवोटी इस पृथ्वी पर हैं, बाकी और सब जगह भगवान के भक्त हैं। यह बिल्कुल सत्य बात। और दूसरे लोगों में मलेच्छ जवान लोग एक भी नहीं है, केवल इस पृथ्वी पर हैं। तो किन पुरुष वर्ष में भगवान श्री राम आराध्य हैं और श्री हनुमान जी भगवान श्री राम की भक्ति के प्रकार और विधि का वर्णन किए हैं। यहाँ पर श्री हनुमान जी किन पुरुष निवासियों को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राम परब्रह्म हैं, परमानंद घन हैं और वास्तव में वे प्राकृत रूप और नाम से शून्य हैं और प्राकृत कर्मों से शून्य हैं, सब तरह से अलौकिक हैं, परमात्मा हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं। तो इस पर एक प्रश्न होता है कि यदि वे इस तरह से श्री भगवान हैं, अपने आनंद में ही रमण करते हैं, उन्हें बाह्य किसी वस्तु की या व्यक्ति की अपेक्षा नहीं रहती है, तो फिर सीता के विरह में इतना क्यों रोए? इसे तो लगता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल अभाव में है और स्त्री के बिना मर जाएगा, नहीं जिएगा। ऐसा देखा गया कि सीता के विरह में बहुत विलाप किए, ऐसा क्यों? और सीता को पाने के लिए समुद्र पर सेतु बांधे, रावण को सपरिवार ध्वस्त कर दिए। तो इसे तो सिद्ध होता है कि श्री राम एक कामी व्यक्ति की तरह हैं, जो स्त्री के बिना रह ही नहीं सकते। तो उनको कैसे कह रहे हैं कि परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, अपने ही आनंद से परिपूर्ण हैं? तो इसका उत्तर हनुमान जी इस श्लोक में देते हैं। मर्त्यावतार स्त्रिहमर्त्य शिक्षण रक्षो बधायै वन केवलं विभो कुतो यथा स्याद् रमतः स्वयात्मना सीता कृतानि व्यसनानि स्वरस्य। वास्तव में श्रीराम ईश्वर हैं। ईश्वर का अर्थ होता है नियंता, वे काल के भी नियंता हैं, समस्त देवताओं के कंट्रोलर हैं। ऐसे भगवान श्री राम में काम वासना उसी तरह से संभव नहीं है जैसे सूर्य मंडल के भीतर अंधकार की कल्पना नहीं की जा सकती, कभी संभव नहीं। शुद्ध सच्चिदानंद श्री विग्रह भगवान में इस प्रकार से किसी स्त्री की कामना कैसे हो सकती है? वे विभू हैं, सर्वसमर्थ हैं। तो फिर इस तरह सीता के विरह में क्यों रोए? हनुमान जी कहते हैं मर्त्यावतारस्तु है मर्त्य शिक्षण। भगवान मनुष्य का रूप जब प्रकट करते हैं तो मर्त्य शिक्षण, मरने वालों को शिक्षा देने के लिए मर्त्य शिक्षण। इस संसार में मनुष्य का जीवन बहुत थोड़े दिन का जीवन है, बहुत थोड़े दिन का, और जब तक जीवन रहता है तब तक अनेक प्रकार के रोग और कष्टों से भरा रहता है। इसलिए मनुष्य को मर्त्य कहा जाता है। मर्त्य का अर्थ है मरने योग्य, और देवताओं को अमर्त्य कहा जाता है। जब तक वे देवता के शरीर में रहते हैं तब तक बीच में एक्सीडेंट से नहीं मरते हैं, निश्चित रहता है उनका, इसलिए उनको अमर्त्य कहते हैं। जब तक जीना है सुख से जीते हैं, निरोग रहकर जीते हैं। लेकिन मनुष्यों का तो कोई ठिकाना नहीं है कि कब किस एक्सीडेंट में मर जाएगा, हार्ट अटैक में मर जाएगा, कि गर्भ में ही मर जाएगा या गर्भ से बाहर आते ही मर जाएगा, कोई ठीक नहीं है। इसीलिए मनुष्यों को मर्त्य कहा जाता है। मर्त्य का अर्थ है हूबहू अर्थ है मरने योग्य, मर्त्य। पग पग में चारों तरफ मृत्यु है मनुष्य। तो मर्त शिक्षणम का अर्थ मरने वाले अर्थात मरण धर्म मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए भगवान का मर्त्यावतार होता है। वो भी मर्त्य के रूप में मनुष्य के रूप में जब प्रकट होते हैं तो मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। यदि शिक्षा देना उद्देश्य नहीं होता तो सीता के वियोग में उनको इतना कष्ट कैसे हो सकता था। शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगावे, इंद्रिय संयम करे, सीखना चाहिए इस जीवन में कैसे इंद्रियों को उनके वेगों से रोका जा सकता है, इसका ट्रेनिंग लेना चाहिए मनुष्य को। कैसे हम आंख के वेग को रोक सकते हैं, कान के वेग को रोकेंगे और फिर तो इंद्रिय के नासिका के वेग को और रसनेन्द्रिय के वेग को रोक पाएंगे। श्री रूप गोस्वामी का जी कहते हैं इन वेगों को जो रोक सकता है वह संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कर सकता है। कैसे है वह श्लोक शुरू? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेग मुद्रो पस्थ वेगम एतान वेगान व विषहत धीर सर्वामपीमान पृथ्वी से शिष्यात्। यदि इन पांचों वेगों को रोक ले कोई तो वह पृथ्वी से शिष्यात्, पृथ्वी पर शासन कर सकता है। जो इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकता है वो पृथ्वी के समस्त निवासियों को भी अपने वश में कर सकता है, ये इसका अर्थ है। तो इंद्रिय निग्रह ही मनुष्य जीवन का सार है, क्योंकि इंद्रियों की धारा यदि विषयों की तरफ रहेगी, यदि इंद्रियां विषय प्रवण रहेंगे तो इनके द्वारा भगवान के रूप गुण लीला आदि को समझ पाना असंभव हो जाएगा। इसलिए इंद्रियों को विषयों से रोक करके एकाग्र करके भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण लीला आदि में लगाना चाहिए। भगवान श्री राम का यही उद्देश्य था शिक्षा देना। अच्छा, सबसे ज्यादा मनुष्य की इंद्रियों को भगवत विमुख कौन करता है? इस संसार में देखा गया है ये दृष्ट सत्य है, सबसे अधिक चित्त को बहिर्मुख करने वाला विषय या इंद्रियों को बाहरी सांसारिक विषयों में ढकेलने वाला जो विषय है वो है स्त्री, और स्त्रियों के लिए पुरुष, यह निर्विवाद सत्य है। इसलिए भगवान श्री राम शिक्षा दे रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को पत्नी में या किसी भी स्त्री में एक्सट्रीम आसक्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी वही दशा होगी जो मेरी हो रही। भगवान सिखा रहे हैं लीला में मर्त्यावतार तो यह मर्त शिक्षण रक्षो बधाई एवं केवलम विभु। भगवान विभु हैं, वो चाहते तो संकल्प मात्र से रावण का वध कर सकते थे, तो रावण का वध करने के लिए ही उनका अवतार नहीं हुआ है, उनका अवतार मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए हुआ है। कितना दुख भोगे हैं भगवान श्री राम, बड़े बड़े धीर पुरुष मुनि जन भी मोहित हो जाते हैं इस लीला को देख करके या सुन करके। थोड़ा सा दूर देखिए, भगवान श्री राम ने राज्य त्याग दिया, धन त्याग दिया, स्वजनों को त्याग दिया, परंतु जैसे भी वो धर्म के बंधन में उन्होंने अपने पत्नी को स्वीकार किया वन में जाने के लिए। भगवान श्री राम बार बार विलाप करते हुए कहते थे यदि वन में नहीं लाया होता उसको तो इतना दुख नहीं हुआ हो। तो जो भी वो सीता तो गई थी वास्तव में भगवान राम का सेवन करने के लिए, सेवा के लिए, परंतु किसी स्त्री को अपने वश में रखना और उसकी रक्षा करना एक बहुत भारी जिम्मेवारी का काम। तो वो घटना इस प्रकार की हो गई, ऐसे तो सबका लिंक है। श्री लक्ष्मी जी ने सूर्पणखा को विरूप कर दिया, सूर्पणखा बाद में रावण के पास गई, रावण लंका का राजा था, वास्तव में बहुत प्रतापी था, बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत तेजस्वी था, लेकिन एक उसकी कमजोरी थी, वो बहुत बड़ा गुंडा था, बदमाश था। विश्व इतिहास में ऐसा गुंडा बदमाश कोई नहीं हुआ। तो वह सुना शूर्पणखा की बात को। अब जिसकी बहन का नाक कान काट दिया गया हो तो उसको तो ऐसे ही क्रोध हो जाएगा, कौन काटा कौन काटा। वो पूछा शूर्पणखा से कौन काटा, तो अयोध्या से दो लड़के आए हैं वो काटे, तुम वहां क्यों गई थी? तो मैं ऐसे घूमते घामते चली गई थी और देखी कि एक उनके साथ स्त्री बहुत सुंदर है, तो मैंने सोचा कि मेरे भाई रावण के लिए वो योग्य है। झूठ बोल रहे थे, वो झूठ बोल रहे टोटल। ऐसे भी अगर मानव समाज में देखा जाए, दो भेद है मानव समाज में, एक पुरुष और एक स्त्री, तो झूठ बोलने में स्त्रियां आगे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, यह बिल्कुल सत्य बात है। भगवान ने इसी के लिए रचा ही है कि ये झूठ बोलें, कपट करें, नहीं तो पुरुषों को कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। तो उजागर के खूब झूठ बोले, जब मैं देखी वो स्त्री बहुत सुंदर थी तो मैं उसको फुसलाने लगी अपने भाई के लिए, तुम्हारे लिए। इसी पर बड़े लड़के का भाई जिसका नाम लक्ष्मण है, उसने मेरा नाक कान काट दिया। और ये भी कहे कि धिक्कार है, दस दस सिर है, तुमको दस गुना दिमाग होना चाहिए, बीस भुजा है, और तो ही जियत दस कम धरा मोर अकियस गति होए, तुम्हारे जीते जी हमारी ये दशा, तुम मर गए होते उसके बाद चाहे मेरा कोई कान काटता या गला भी काट देता तब भी कोई बात नहीं, कि तुम्हारे जैसे प्रतापी भाई के रहते रहते और तुम्हारे बहन की ये दशा, धिकार है। तो रावण बिल्कुल जीत गया। बहुत लंबा प्रसंग है रावण का कि अच्छा ठीक, तो मैं उस उन दोनों का वध कर देता हूं। लेकिन उसका एक पुत्र था, उसने बताया कि उनका वध नहीं कर पाएंगे आप, वे भगवान हैं, ये है, अगर मनुष्य भी जाने तो इतने प्रतापी हैं कि उनके धनुष के आगे, उनके बाण के सामने दुनिया नहीं टिक पाएगी। उनका प्रसिद्ध धनुष बाण है, राम एक ही मिनट में सारे विश्व को अपने वश में कर सकते हैं, इतना उनका प्रताप। तो आप ऐसे युद्ध करने का उपाय छोड़ दीजिए भाण। तब उसने कहा तब ठीक है, मैं इन दोनों को धोखा में डाल करके उनकी पत्नी का हरण करूंगा, ये निश्चित किया। लेकिन धोखा में कैसे डालेगा, वो राजा था, विचार करने लगा कैसे इन दोनों को धोखा में डालूं। तो उसे याद आया कि राक्षसों के समाज में एक बहुत कपटी राक्षस था, बहुत प्रकार की माया सीखा था, और इसका मामा लगता था रावण का, उसका नाम था मारीच। तो एक बार रावण मारीच के पास गया, यदि मारीच उसका मामा लगता था, लेकिन मारीच खुद ही उठकर सलाम किया रावण को। मामा हो चाहे कुछ भी हो, राजा को तो प्रणाम करना ही पड़ेगा। तो उठकर प्रणाम किया और पूछा, राजन आप अकेले कभी नहीं चलते थे, हमेशा मंत्री सेनापति या सचिव आदि के साथ चलते थे, आज अकेले कैसे आ गए? आश्चर्य होता है ना, राजा कहीं किसी के पास अकेले जाए, एक बार जाता था तो झुंड के साथ अपने लोगों के साथ, और अकेले जाए। रावण ने कहा सुनो, एक बहुत बड़ा कार्य आ गया है, अयोध्या से दो लड़के आए हैं, उनके पास बहुत सुंदरी स्त्री है, मैं एक काम के लिए आया हूं कि तुम किसी भी उपाय से राम और लक्ष्मण को मोहित करो और उस स्त्री को भी मोहित करो, किसी भी तरह से तुम उनको आश्रम से दूर कर दो और एकांत पा करके मैं उस स्त्री का अपहरण करना चाहता हूं। इतना सुनते ही मारीच कहा, रे बाप रे बाप, आप नाम मत लीजिए राम से विरोध करने का, मत करो हो रावण राम से लड़ाई। मारीच कहता है, राम से ऐसा मत सोचो। बहुत प्रकार से समझाया, बहुत प्रकार से समझाया, यदि सीता का हरण करने की तुम्हारी इच्छा हो रही है तो इसका मतलब है रावण कि अब तुम्हारी मृत्यु बिल्कुल निकट आ चुकी है, तभी ऐसा विचार आ रहा है। ऐसा विचार छोड़ दो, मैं तुम्हारा मामा हूं, तुम्हारे प्रति मेरी बड़ी ममता है, मैं चाहता हूं कि तुम जियो, बहुत दिन तक राजा रहो, लेकिन मरने का प्रस्ताव क्यों रख दिया? मरने का प्रस्ताव तुम रख रहे हो, किसी महाविषधर सर्प के मुख का दांत निकालना चाहते हो तुम, ऐसा काम मत करो। बहुत प्रकार से समझाया। लास्ट कन्वर्सेशन में वाल्मीकि जी लिखते हैं, रावण कहा कि देखो, हाँ तो मारीच ने कहा कि तुम लौट जाओ, तुम ये काम मत करो, सोचो ही मत सीता के हरण का, नहीं तो मरना निश्चित होगा। तब रावण कहा कि देखो, राजा को बिना पूछे सलाह नहीं देना चाहिए। मैं तुमसे पूछा कि मैं जो करने जा रहा हूं वो ठीक है या गलत है, पूछा तुमसे? पूछा था? मैं ये नहीं पूछने आया हूं कि मैं जो करने चला हूं ठीक है या ठीक नहीं है, मैं तुमको आज्ञा देने आया हूं, और भांजा के रूप में नहीं, राजा के रूप में मैं हूं, तुम मेरी प्रजा हो, मेरा मनोरंजन करना, मेरी आज्ञा को मानना तुम्हारा धर्म है। तुम कैसे साहस किया हमको कुछ शिक्षा देने का? तुम जानते हो क्या नीति है, भले राजा गलती करे लेकिन उससे हमेशा प्रिय वचन बोलना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए, अन्यथा तुम कहते हो कि सीता का हरण करने पर मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मेरी बात नहीं मानने पर अभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। देख रहे हो तलवार, अभी गर्दन अलग कर दूंगा। सीधा बोला, राजाओं को राय नहीं देनी चाहिए, वो जो कहते हैं सुन लेना चाहिए। हम तुमसे ये सुनने नहीं आए हैं कि सीता का हरण करना ठीक है या धर्म है या गलती है, जो भी हो तुम बोलो मेरी मदद करोगे कि नहीं। नहीं करोगे और ऐसे मदद करोगे तो हो सकता है राम तुम्हारा वध करो ना करो, बच भी सकते हो, लेकिन अगर मेरी आज्ञा नहीं मानते हो तो तुम्हारा वध अभी निश्चित है, तो चुन लो दोनों में। तो इतना सुन करके मारीच को क्रोध आ गया, क्रोध में तो जानता है कि तो मार ही डालेगा, इसकी आज्ञा नहीं मानूंगा, उधर जाऊंगा तो राम मारेंगे, बेटर है राम के हाथ से मरना, इस पापी के हाथ से मरना ठीक नहीं, राम जैसे सद्गुरु व्यक्ति के हाथ से भी मर जाना ठीक है। अरे साक्षात भगवान है, धनुष बाण लेकर के मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे, मैं हरिण बनूंगा। रावण कहा था कि तुम माया मृग बनो, हरिण बनो और उसके पत्नी को लुभाओ, तुम इस कला में दक्ष हो। तो उसने विचार किया कि भगवान राम को देखूंगा, मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे और बाण मारेंगे, मैं मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन इस पापी के हाथ से मरना ठीक नहीं। तो खुल करके गाली देना चालू किया कि हम मारे चाहे कुछ भी, कि ठीक है तुम्हारी आज्ञा का तो पालन मैं करूंगा, मैं जानता हूं कि तुम अपनी जिद से हट नहीं सकते हो, अब तुमको मरना ही है तो हम क्या करें, हम ब्रह्मा की लिपि को नहीं मिटा सकते हैं, लेकिन इतना कह रहे हैं कि तुम मरोगे 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 दुष्ट कहीं के। तुम्हारा मरना निश्चित हो गया, तुम पापी हो, क्रूर कर्मी हो, कामी हो, किसी दूसरे की स्त्री पर इस तरह से निगाह डालना, उसे हर करके लाने की सोचना, तुम्हारा वेद पढ़ना बिल्कुल बेकार है, तुम विद्या जानते हो लेकिन समय पर कोई काम नहीं आ रहा है। इस तरह से कहता हुआ बड़बड़ाता हुआ वो चला गया। रावण का ठीक है तुम माया मृग बनो और राम के आश्रम के पास चलो, अपनी भावभंगी से अपने शरीर की कांति से उस स्त्री को लुब्ध करो और सुनो, और अंग जैसा भी हो लेकिन तुम्हारा जो चाम होना चाहिए बिल्कुल गोल्डन होना चाहिए, गोल्ड सही गोल्ड का होना चाहिए, ऐसा लगे कि ये सोने का मृग है। किसी भी व्यक्ति को धन देख करके लोभ हो जाता है, उस स्त्री को लोभ होगा, अपने पति के साथ जंगल में दुख भोग रही है, तो सोचेगा अब चाम पूरा हटाया जाएगा तो कई लाख का हो सकता है सोना, उसको लोभ होगा तो राम को भेजेगी या दोनों भाई जा सकते हैं, तो ऐसा एकांत पाकर के मैं सीता का हरण करूंगा, ठीक है तुम जाओ। तो मारिच गया, अद्भुत मृग बना। आज तक इतिहास में ऐसा मृग का वर्णन नहीं आता है, बिल्कुल चमक रहा था, सूर्य की तरह चमक रहा था, इतना सुंदर चाम था उसका और चितकबरा था, बीच बीच में बहुत से दाग थे उस पर, आंखें बहुत सुंदर थी, खुर बहुत सुंदर था, बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। तो उस समय सीता जी अपने आश्रम से बाहर होकर फूल चुन रही थी, फूल चुन रही थी भगवान राम को पहनाने के लिए या देवता की पूजा के लिए, भगवान विष्णु की पूजा के लिए फूल चुन रही थी। तब तक तो उन्होंने देखा, भगवान राम और लक्ष्मण जी आश्रम पर थे, सीता जी आश्रम के बगीचे में घूम रहे थे, तो देखा उन्होंने, तो देखी तो देखती रह गई। अद्भुत सुंदर हरिण था, अद्भुत सुंदर। देखिए जब कोई आश्चर्यमय दृश्य देखा जाए, कोई अनहोनी चीज जो पहले नहीं हुई है, तो उस मनुष्य को चाहिए कि सतर्क हो जाए, कोई ना कोई धोखा उसमें होता है। इन सीता जी ने कुछ भी विचार नहीं किया और वहीं से पुकारी लक्ष्मण, अपने भाई के साथ धनुष बाण लेकर के आओ इधर, दूर से ही पुकारी। तो लक्ष्मण जी गए, नहीं लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के साथ गए, कुछ दूर जा रहे थे तो लक्ष्मण जी ने देखा मृग को। लक्ष्मण जी भगवान राम से कहने लगे कि देखिए यह कोई राक्षस है जो माया से मृग बना हुआ है, और ये और कोई नहीं हो सकता है, ये मारीच है। लक्ष्मण जी ने साफ कह दिया, क्योंकि उनको पता था वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत माया जानता है। वो कहे कि हम लोग जब से जन स्थान में पंचवटी के आसपास राक्षसों का वध किए हैं, तब से राक्षसों का समुदाय जो बचे हुए हैं हम लोगों के खिलाफ हो गए हैं, और हम लोगों पर विपत्ति डालना चाहेंगे। और भैया विश्वास कीजिए, ये सीता के हरण के लिए कोई नाटक होने जा रहा है, सीता के हरण के लिए कोई नाटक होने जा रहा है। तो सीता जी बुलाई, वो बिल्कुल आश्रम के पास ही थी। लक्ष्मण जी कह रहे थे कि यह किसी राक्षस की माया है, कोई मृग नहीं है, मैं इसके अद्भुत रूप को और स्वभाव को देख करके समझ रहा हूं कि यह कोई माया है, कोई ब्रह्मा के द्वारा रचित यह मृग नहीं है, यह हरिण नहीं है, यह कोई राक्षस है। तो भगवान श्री राम का देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो मनुष्यों के लिए कहा जा सकता है भगवान तो लीला कर रहे हैं, इसके पहले ही भगवान एक लीला रच चुके थे कि सुनम प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब रुचिर नर लीला। भगवान राम ने पहले ही कहा था कि हे प्रिय, मैं मनुष्य लीला करने चाहता हूं, तुम मेरी सहायता करो। तो सी भगवान ने कहा कि तुम अपने को अग्नि में छिपा दो और नकली सीता प्रस्तुत करो। तो सीता जी अपने को अग्नि में रख दी, अग्नि में प्रवेश कर गई, और वैसे ही सीता, नकली सीता अपने को प्रकट कर दिया। लक्ष्मण जी नहीं जाने, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान है। भगवान ने जो कुछ किया लक्ष्मण नहीं जाने, क्योंकि उस समय कंद मूल फल लेने गए थे और इधर भगवान अपनी प्रिया से ये योजना कर लिए कि हमको मनुष्य लीला करनी है, रावण का वध करना है, तुम अग्नि में निवास करो। वही लंका में जब अग्नि परीक्षा हुई तो नकली सीता वहां पर अदृश्य हो गई, असली सीता आग से प्रकट होकर आ गई। ये रावण वास्तविक सीता का स्पर्श नहीं किया था। चैतन्य महाप्रभु के लीला में कुर में ब्राह्मण के प्रसंग से बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। तो भगवान ने कहा ऐसे तो सीता जी तो नकली सीता जी हो चुकी थी वास्तव में। तो वो कह रही थी बार बार कि मेरे पकड़ो, इसको जीवित पकड़ करके लाइए। उसने अपने पति से कहा कि हे प्रियतम, आप प्रयास कीजिएगा कि इस हरिण को जीवित पकड़ लें। हम लोग जब अयोध्या लौटेंगे तो हम इसको ले चलेंगे और हमारे आंगन में, हमारे बगीचे में रहेगा, मैं रोज इसको देखूंगी, ये बहुत प्यारा मृग है। बाप रे बाप, बहुत प्यारा राक्षस है और बहुत प्यारा मृग है। यही भ्रम मनुष्य को हो जाता है, इसका रूप ऐसा है, इसका रूप ऐसा है, ऐसा हमने कभी सुना भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। और कदाचित अगर यह आपकी पकड़ में न आवे तो इसका वध करके चाम लाइए। इसका उस चमड़े पर, मृगचर्म पर हम लोग पहले हम लोग घास पात बिछा करके मृगचर्म बिछाएंगे, उस पर हम और आप बैठेंगे, भगवान का भजन करेंगे। ये कह रहे हम लोग बैठेंगे, मृगचर्म पर बैठना बड़ा अच्छा माना जाता है, उससे सर्प नहीं आते हैं, बिच्छू नहीं आते हैं, कई तरह से रक्षा होती है। तो हम लोग उस पर बैठेंगे, ऐसे प्रयास कीजिएगा जीवित पकड़ने का। लक्ष्मण जी कहे कि माता जी आप क्या बोल रही हैं, अरे ये कोई मृग नहीं है, मैं निश्चित कह रहा हूं ये कोई राक्षस है और राक्षस में भी मारीच है। तो भगवान श्रीराम बीच में क्या कहते हैं, लक्ष्मण सुनो, सीता की इच्छा को पूरा करना हमारा धर्म है, भगवान तो ये लीला करना चाहते हैं, सीता की इच्छा पर व्याघात मत करो। अगर ये चाहती है जीवित पकड़ना तो हम जीवित कोशिश करेंगे और नहीं तो चाम लाएंगे, जिसका चर्म लाएंगे। और तुम कहते हो कि यह मृग नहीं है, राक्षस है, तब तो इसका और वध करना चाहिए, तब तो इसको मारने के लिए मुझे जाना ही चाहिए ना। जब इस तरह का राक्षस कह रहे हो तो उस दृष्टि से भी इसको मारना ठीक है, तो ठीक है मेरा धनुष लाओ। लक्ष्मण जी धनुष लाए, बाण लाए, तरकस, भगवान श्री राम कमर कसे, जटा को संवारे और निकलने के पहले लक्ष्मण से कहे, लक्ष्मण इस क्षेत्र में घोर जंगल में अनेक राक्षस अनेक मायावी रूप बना करके घूमा करते हैं, कुछ पता नहीं चलता है, और कई मुनियों को खा गए हैं, यहाँ पर कई ऋषि मुनि भक्तों को सीधे खा गए हैं, उनका हड्डी छोड़ करके बाकी चाम और मांस वो लोग ऐसे जीवित खा जाते थे, फेंक देते थे हड्डी जहाँ तक। भगवान कहते हैं ये क्षेत्र पूरा राक्षसों से भरा हुआ है और जब से हमने खरदूषण आदि का वध किया, उनके 14,000 सैनिक राक्षसों का वध किया, तब से सब हमारे बैरी हो गए हैं, अतः यदि थोड़ा भी एकांत मिलेगा तो वे सीता को खा जाएंगे या अपहरण करके ले जाएंगे। इसीलिए लक्ष्मण तुम यहां रुको आश्रम पर और मैं जा रहा हूं। जाते जाते भगवान श्री राम का याद हो गया, मेरी आज्ञा है कि तुम सीता की रक्षा करो, सीता को एक क्षण के लिए भी छोड़कर मत जाना, थोड़ा भी अवसर मिलने पर राक्षस खा जाएंगे इसको, क्योंकि वो आश्रम के आस पास भी वो हवा के रूप में रह सकते हैं, नेवला के रूप में रहेंगे, मृग के रूप में रहेंगे, वृक्ष के रूप में भी रह सकते हैं, इसलिए एक क्षण भी छोड़ करके मत जाना। भगवान श्री राम इस तरह से सावधान किए लक्ष्मण जी को। तो ने कहा ठीक है मैं सीता की रक्षा करूंगा। तो वे भगवान श्री राम चले गए, भगवान श्री राम चले गए, लक्ष्मण जी रह गए, तो हरिण तो मायावी राक्षस था, वो राम को देखते ही बहुत तेज गति से भागा और अदृश्य हो गया। थोड़ी दूर पर अदृश्य हो गया, भगवान चकित हो गए, ये भी तो मनुष्य नाट्य कर रहे हैं, सर्वज्ञ ईश्वर होते हुए दिखने लगे, किधर गया, झाड़ी में, जंगल में, इधर उधर झांकने लगे, फिर पीछे झांकते हैं कहाँ गया कहाँ गया, तब तक दिखाई पड़ा, और बिल्कुल निकट दिखाई पड़ा, इसलिए कि राम को आशा बंधी रहे कि मैं इसको पकड़ लूंगा, इस आशा से बिल्कुल निकट कभी दिखाई पड़ता था, कभी अदृश्य हो जाता था, कभी बहुत जोर की छलांग लेकर के आगे बढ़ जाता था, कभी बगल में, कभी इधर कभी उधर, इस तरह से राम को परेशान कर रहा था। और भगवान श्री राम भी अब उसकी गति के अनुसार ही कभी बाएं दाएं, कभी इधर उधर, कभी राम भी दौड़ते थे बहुत जोर से। भगवान श्री राम समझ गए, वैसे तो सर्वज्ञ पहले से ही जानते हैं, लेकिन जान गए कि हरिण नहीं है, यह कोई राक्षस है, लक्ष्मण ठीक कह रहा था, ये कोई राक्षस। तब तो उनके मन में आ गया कि इसका वध करना है, तो एक बार बहुत तेज भागा, भगवान भी बहुत तेज गति से चले, लेकिन फिर भी अदृश्य हो जाता था, तो श्री राम थक गए, वो हाँफने लगे, हाँफते हुए एक वृक्ष के आड़ में, घास के मैदान में खड़े हो गए, बहुत भीतर से ऐसे तिरछा जाकर, तो देखे कि पीछे से वो मारीच प्रकट हुआ हरिण, उसी समय अपने बहुत भयानक तीखे बाण को मारा उन्होंने, तो पीछे से लगा उसके पूरे शरीर को छेद करके कलेजा को फाड़ दिया, इस तरह से वो गिरा, लेकिन गिरते समय भी उसने रावण की मदद किया, उसने जोर से कहा, हा सीते, हा लक्ष्मण, रक्ष माम, हे सीते, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रावण ने कहा था कि तुम जोर से चिल्लाना कि हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, और तुम इस विषय में एक्सपर्ट हो, किसी के स्वर की आवाज की नकल तुम कर ही लेते हो, तो राम कैसे बोलता है उसके स्वर में बोलना, जिसे किसी को भी सुन करके ऐसा लगे कि राम किसी विपत्ति में है और हा सीता हा लक्ष्मण बोल रहा है, इस तरह से रावण सिखाया था। तो मारीच बहुत एक्सपर्ट मायावी था, आपने देखा है ना, यहाँ पर कुछ मनुष्य भी हैं जो पशु जैसे बोल लेते हैं, कई बार हमने सुना है, पशु की बोली बोल लेते हैं तो आदमी की बोली बोल ले तो इसमें क्या आश्चर्य की बात। कुछ ऐसे लड़के देखे हैं जो लड़की जैसे गाने लगते हैं। एक बार नरहरी दास ने प्रोग्राम किया था तो मैं देखा एक लड़का गा रहा था, लेकिन एकदम लड़की के स्वर में। तो जब साधारण मनुष्य इतना एक्सपर्ट होता है तो राक्षस मायावी और राम की आवाज में बोले, इसमें कौन आश्चर्य। तो कई बार उसने कहा, हा लक्ष्मण, हा सीते, रक्ष माम, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, जोर से बोला, इतने जोर से बोला कि वो सीता और लक्ष्मण सुन ले, और राम के स्वर में बोला। जब इस तरह से वह बोला तब सीता जी ध्यान से सुन रही थी, वो बिल्कुल चिंतित हो गए, उधर भगवान राम भी चिंता में पड़ गए कि हा सीता हा लक्ष्मण मेरे स्वर में क्यों बोल रहा है, और बहुत चकित हो गए कि हाय हाय, सीता जब इस बात को सुनेगी तो बिल्कुल दुखित हो जाएगी, उसका कलेजा कांपने लगेगा कि मैं विपत्ति में पड़ गया हूं। और जान गए कि सीता और लक्ष्मण को सुनाने के लिए ही ये बोल रहा है मेरे आवाज में। तो सीता जी सुने, लक्ष्मण जी भी सुने, लेकिन लक्ष्मण जी तो जानते थे भगवान की शक्ति को, और ये भी जानते थे कि ये किसी राक्षस की नकली आवाज है, राम इस तरह से कभी दीन दशा में हो ही नहीं सकते, कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि राम कहें कि हमको बचाओ, हमको ये करो, लक्ष्मण जी जानते थे भगवान का स्वभाव स्वरूप, परंतु सीता जी सुनी, कहती लक्ष्मण लक्ष्मण सुन रहे हो किसका स्वर है, सुन रहे हो, ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे भाई किसी भारी संकट में पड़ गए हैं, तुम जाओ उनको बचाओ, जाओ 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 बचाओ, सुन रहे हो, कातर ध्वनि है, कातर आवाज में पुकार रहे हैं, रक्षमा मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, लक्ष्मण जाओ जाओ अपने भाई की रक्षा करो, वो बहुत दुख में है, लगता है कई राक्षसों ने मिल करके उनको दुख दिया है, उनको मारने के फेर में है, इसीलिए तुम जाओ जाओ जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी चरण वंदना करके सीता जी की कहते हैं कि माता जी आप कभी ऐसा ना सोचें कि राम किसी विपत्ति में किसी भी काल में पड़ सकते हैं, कोई राक्षस कोई देवता किन्नर गंधर्व नाग या मनुष्य सारा जगत मिलकर के राम को संकट में नहीं डाल सकता, आप विश्वास कीजिए यह किसी राक्षस की आवाज है राम के स्वर में, राम पर इस प्रकार की विपत्ति आ ही नहीं सकती है, आप विश्वास कीजिए, अपने चित्त को स्वस्थ कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, आप राम के स्वभाव को नहीं जानते इसीलिए आप घबरा रही हैं, राम पर इस प्रकार का संकट आ ही नहीं सकता, राम इस प्रकार के दीन वचन कभी बोल ही नहीं सकते। इतना सुनने पर सीता जी कहती हैं ये तुमको समझ में नहीं आ रही आवाज किसकी है, ये राम की आवाज नहीं है, तुम कहते हो कि विपत्ति में नहीं पड़ेंगे, ये किसकी आवाज है, राम की आवाज है ना, वो विपत्ति में है, तुम क्यों नहीं जाते हो, मैं तो ऐसे जान गई कि तुम मित्र के रूप में भाई के रूप में शत्रु आए हो वन में हम लोगों के साथ, क्या तुम चाहते थे कि राम मर जाए इसी तरह से संकट में पड़ करके, बहुत कठोर बोल रही थी सीता जी, बहुत कठोर बोल रही थी, ये राम का कातर स्वर तुमको प्रिय लग रहा है क्या, क्या तुम उस दिन का मनोरथ कर रहे थे कि किसी दिन राम संकट में पड़े, हमें तो संदेह हो रहा है कि तुमको भरत में तो नहीं भेजा है राम के विरुद्ध, इस तरह से बोलने लगी। अब तो मुंह खुल गया उस स्त्री का तो आकाश पताल एक कर, कुछ भी बोल सकती। लक्ष्मण जी फिर समझाते हैं, माता जी आप एक बार स्त्री हृदय की कमजोरी छोड़ करके जरा मेरी बात सुनिए, आप चाहे मुझे जो कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप धैर्य रखिए, राम तुरंत लौटेंगे आश्रम पर, राम कभी संकट में नहीं पड़ सकते हैं, ये राम की आवाज नहीं है, ये राक्षस की आवाज है, ये है वो है। इतना सुनते ही सीता जी बिल्कुल आग बबूला हो गई, आंखें लाल हो गई और कहने लगी नीच कामी नृशंस, तुम इसीलिए बन में आए थे कि राम एक दिन मर जाएंगे तो तुम उसको रख लोगे सठ कहीं के, लेकिन जानते हो राम के बिना मैं आग में जल जाऊंगी, विष खा लूंगी, पर्वत से ऊपर से गिर करके मर जाऊंगी, नदी में धस जाऊंगी, लेकिन मैं राम के अलावा किसी पुरुष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती, तुम इसीलिए आए हो ना कि एक दिन राम नहीं रहेंगे तो तुम सीता को रख लोगे। दुष्ट कहेंगे बहुत बहुत अपशब्द बोली, बहुत अपशब्द बोली, तुम्हारा यह मनोरथ कभी सफल नहीं हो सकता है, इतना डायरेक्ट इतने साक्षात राम के कातर स्वर को सुन करके भी तुम कहते हो कि ये राक्षस की आवाज है, ये राम की आवाज नहीं है, नीच कहीं के, तुम भाई के रूप में शत्रु आए हो, तुम इसीलिए अयोध्या से पीछे पीछे आए हो कि एक दिन राम के अभाव में तुम सीता का भोग करोगे ना, लेकिन मैं मर जाऊंगी, मैं दुनिया में किसी पुरुष को छू नहीं सकती हूं कभी भी, और इतना कह करके सीता जी रोने लगे। अब तो सब भगवान की लीला थी, अब सीता जी रोने लगी, क्रोध से आंखें लाल हो रही थी, बोल बोल करके रोने लगे। फिर लक्ष्मण जी कहे ठीक है मैं अब इससे आगे नहीं सह सकता हूं, मैं आपकी बात को इसीलिए सह लिया कि आप स्त्री हैं, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव होता है, लक्ष्मण जी कहते हैं वो क्रोध में आने पर कुछ भी बोल सकती है। लक्ष्मण जी का यह वाक्य है वाल्मीकि रामायण में, कहा कुछ भी बोल सकती है और क्षण भर में बदल जाती है। पति से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, प्रशंसा करती है करती है, तब तक एकाएक चप्पल चला देती है। ऐसा भी होता है, क्षण क्षण में चंचला है वास्तव में, चप्पल वो बदल सकती है। अभी प्रशंसा करेंगे प्रशंसा, और तब तक अगर मुंह खुल जाएगा तो पति को भी इतना नीच इतना गाली देती है कि ये भगवान ने स्वभाव बनाया है स्त्री का। इसीलिए स्त्रियों की बातों को सहना चाहिए, स्वयं उद्विग्न नहीं होना चाहिए, वो कुछ भी बोल सकती है। अभी स्वभाव ही है तो कोई क्या करेगा, भगवान ने ऐसा स्वभाव बनाया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि स्त्रियां स्वभाव से ही धर्म का त्याग किए रहती है। धर्म मतलब बिना आदि धर्म उनमें नहीं होता है। क्षण भर में तो बहुत नम्र दिखेंगे, बहुत सुशील, लेकिन जब रणचंडी का रूप धारण करती हैं तो फिर उनके सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता। देखिए सीता का कितना प्रेम से बातें करती थी, आई थी साथ में, कितने वर्ष लक्ष्मण जी रहे, और आज एक थोड़ी सी बात पर कहते हैं कि तुम इसी उद्देश्य से आए थे कि राम के मरने के बाद तुम मुझे रख लोगे। बाप रे बाप, उन महात्मा लक्ष्मण के प्रति इस प्रकार का वचन बोलना यह केवल सिद्ध करता है। वास्तव में इसीलिए सब लीलाएं दिखाई जाती हैं। सीता जी कोई सामान्य नारी नहीं थी, लेकिन एक नारी जाति के स्वभाव को व्यक्त करने के लिए बोल रही है, बोला जा रहा है कि किसी विपरीत समय में कभी भी कोई स्त्री बिल्कुल विकराल रूप धारण कर सकती है और कुछ भी बोल सकती है, तो उसमें पुरुष को व्यथित नहीं होना चाहिए, चुपचाप सह लेना चाहिए, और इसके बाद तो फिर ठंडा हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार का वाक्य लक्ष्मण जी के प्रति बोलना सीता का, अद्भुत बात। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपकी बात को इसीलिए सह रहा हूं कि आप स्त्री हैं, अगर कोई पुरुष ऐसा बोला होता तो शायद उसका गला काट दिए होते, लेकिन सीता जी स्त्री हैं तो स्त्री तो बेचारे कुछ भी बोल सकती है, उसका स्वभाव ऐसा होता है, उतना विवेक नहीं होता है, कुछ भी आकाश पताल एक कर सकती है। तब लक्ष्मण जी कहे ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन आपको मैं चेतावनी दे रहा हूं, यहां बहुत से राक्षस मायावी रूप में घुमा करते हैं, कभी भी आपका अपहरण कर सकते हैं, आपको खा सकते हैं, देवता पितर सब आपकी रक्षा करें, मैं जा रहा हूं, तो भगवान ने मुझे कहा है मत छोड़ना, लेकिन मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता, इतना मैं नहीं सहन कर सकता। इसके बाद उन्होंने एक वैदिक मंत्र द्वारा एक रक्षा रेखा खींचा और कहा ठीक है आप इसके बाहर मत होइएगा, जब तक हम रघुनाथ के साथ लौटते नहीं हैं तब तक आप इस रेखा के बाहर मत होइएगा। सीता जी उस समय भी रो रही थी, कहती तुम जाओ जल्दी, रोते हुए कहा उन्होंने। लक्ष्मण जी फिर प्रणाम करके गए। उधर की क्या घटना थी, वो तो राक्षस था, विशाल रूप प्रकट हो गया था, भगवान मृगचर्म ले लिए थे और ले करके लौट रहे थे, तब तक उन्होंने देखा बहुत दूर चले गए थे श्री राम, तो लक्ष्मण आ रहे थे। लक्ष्मण को देखते ही भगवान श्री राम बिल्कुल चिंता में पड़ गए और उनकी वास्तव में बाई आंख फड़क रही थी और बाई भुजा फड़क रही थी, बाई आंख में भी जो नीचे की पलक है वो फड़क रही थी, यह अनिष्ट का सूचक। भगवान श्री राम लक्ष्मण को देखते ही कहने लगे तुम इधर क्यों आए, मैंने तुमको सीता की रक्षा के लिए कहा था ना। इस तरह से ये भी शिक्षा है कि स्त्री और पुरुष के बीच में कभी नहीं पड़ना चाहिए, वो उधर से भगा रही है और इधर से डांट रहे, ये क्या आया। यह बुद्धिमानी है वास्तव में। ये नहीं समझ लेना चाहिए कि पत्नी पति के खिलाफ हो गई है, पति खिलाफ हो गया है तो बीच में पड़ जाए और कुछ कंप्रोमाइज करा दे, वो दोनों ओर से थूरा जाएगा, दोनों ओर से मारा जाएगा। कभी ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। वो लोग रोज रुसते हैं, रोज कुपित होते हैं, रोज झगड़ा करते हैं, मिल जाते हैं, दूसरे को किसी की जरूरत नहीं है मिलाने की। तो भगवान श्री राम डांटने लगे, तुम क्यों आए इधर क्यों आए, तुमको मैं कई बार चेतावनी दिया था, हमें तो अब आशा है कि सीता को राक्षस खा गए होंगे या हर करके ले गए होंगे, रास्ते में होगी, सीता आश्रम में नहीं है, नहीं है, नहीं। भगवान श्री राम की हालत बिल्कुल दीन होने लगी, शरीर से पसीना आने लगा, मुख सूखने लगा, मुझे विश्वास है लक्ष्मण की सीता नहीं है, तुम आए कैसे, क्यों तुम्हारा विचार बदल गया। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि सीता ने मुझे इस तरह से बोला। भगवान कहते हैं कि ओह, सीता ने तुमको कुछ कड़ा बोला इसलिए चले आए, तुम स्त्री का स्वभाव नहीं जानते हो। अरे वो तो बोल सकते हैं, बेचारी स्त्री है, तुम तो पुरुष हो ना, तुमको धैर्य रखना चाहिए था, हद हो गया, तुम थोड़ी सी बात सह नहीं सकते। लक्ष्मण जी कहते हैं ये क्या सहने लायक बात है कि वो कहती है कि तुम राम को संकट में देखना चाहते हो, मेरे प्रति तुम्हारी बुरी दृष्टि है, ये सहने लायक बात है। भगवान कहते हैं लक्ष्मण स्त्री कुछ भी बोल सकती है, सब सह लेना चाहिए, इसमें क्या हो जाता था। भगवान शोक में बोल रहे थे, तुमको सब कुछ सहना चाहिए था, अब तो सीता को मैं खो चुका, अब नहीं है, निश्चित राक्षस खा गए होंगे, ये हो मृगचर में लिए लिए जल्दी से जल्दी दोनों भाई अब चल रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे थे। भगवान श्री राम बार बार गिर रहे थे मूर्छित होकर के सीता के विरह में, वहां से चालू हुआ है 10 अध्याय में वाल्मीकि जी ने राम के विलाप का वर्णन किया सीता के विषय में, 10 अध्याय में ऐसा ऐसा विलाप करते हैं कि हाय हाय, मैं एक क्षण भी लक्ष्मण जीवित नहीं रह सकता हूं, यदि सीता नहीं होगी आश्रम में तो मैं जी नहीं सकता हूं, सीता मेरा प्राण है, मेरे लिए अयोध्या छोड़ दी, यह की वह की वह की, भगवान उसके गुणों को गा गा करके रोने लगे, बहुत विलाप कर रहे हैं। इसी विलाप के विषय में ही हनुमान जी यहाँ कह रहे हैं सीता कृतानि व्यसनानि, सीता के वियोग में इतना दुखी होना कि आज का तो अज्ञ से अज्ञ मनुष्य भी उतना पागल नहीं होगा जितना राम पागल हो गए थे वास्तव। अरे इसकी पत्नी मान लीजिए अपहृत हो जाए, चली जाए तो ये रेडियो में देगा या टीवी में देगा, अखबार में देगा, फोटो देगा कि कहाँ गई, कोई बताओ, ये करो, लेकिन कभी किसी झाड़ से या पत्थर से, नदी से या हरिण से या कुत्ता से, बिल्ली से तो नहीं पूछेगा ना कि बताओ मेरी प्यारी कहाँ चली गई। क्या कोई पागल इस समय भी वृक्ष से पूछेगा, लेकिन श्री राम तो वृक्षों से पूछ रहे थे, पूछत चले लता और उपाती, लता से पूछ रहे, वृक्ष से पूछ रहे, सबसे पहले कदम्ब वृक्ष से पूछे, हे कदम्ब तुम्हारा पुष्प मेरी प्रिया को बहुत प्रिय लगता था, वो हमेशा अपने जूड़े में तुम्हारे पुष्प को खोसा करती थी, अतः तुमको जरूर पता होगा वो कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। इस तरह से कहते हुए आश्रम पहुंचे, आश्रम में सबसे पहले भगवान भीतर गए तो सीता तो वहां थी नहीं, इसके बीच में क्या हुआ था उन्हें प्रसंग छोड़ दिया। जब ही लक्ष्मण जी गए राम के पास तब ही रावण आ गया, वो जब हरिण बन करके मारीच लुभा रहा था सीता जी को, तो रावण आ करके छिप गया था कहीं पर, और लक्ष्मण जी जब ही आश्रम से गए सीता को छोड़ करके रावण आ गया, वो मायावादी सन्यासी के रूप में आया, ऐसे त्रिपुण ऐसे तिलक लगाया था और जूता पहना था, खड़ंग नहीं लगाया था, जूता लगाया था, बिल्कुल लाल कपड़ा था, और ओम ओम बोल रहा था, हरे कृष्ण करे नहीं बोल रहा था, नमः शिवाय कर रहे थे। आया वो रेखा को जानता था, लक्ष्मण जी जब रेखा खींच रहे थे तो उसने देखा तो नहीं था, लेकिन एक बार वो आगे बढ़ने की कोशिश किया तो रेखा में आग लग गई, वो बाउंड्री का काम कर रहे थे, तो जान गया कि इधर मैं मर जाऊंगा, तो बाहर ही रहा। भिक्षाम देही भिक्षाम देही, परिव्राज परिव्राजकाचार्यो अहम, मैं परिव्राजक आचार्य हूं। सीता जी सुने, सीता जी स्वाभाविक आकर के खड़ी हो गई और भीतर से बरामदे के पास ही कुटीर के बाहर खड़ी हो गई। सीता जी ने स्वागत किया, प्रणाम किया, कहा होगा नमो नारायण या जो भी कहा होगा। तो सीता जी ने प्रणाम किया, इसके बाद आशीर्वाद देता है रावण, चिरंजीवी भव या सौभाग्यवती रहो, जो भी किया। इसके बाद रावण सीधा सीता जी के सौंदर्य का वर्णन चालू किया, कोई कथा नहीं, कोई आध्यात्मिक वार्ता नहीं, कहती है ओहो तुम्हारा अद्भुत रूप है, तुम्हारा मुख ऐसा है, तुम्हारे बाहें ऐसी हैं, तुम्हारा ओष्ठ ऐसा है, स्तन ऐसा है, ये है वो है ये है, अरे तुम तो देवताओं के लोक में रहने के योग्य हो, फिर इस फूस की बनी हुई झोपड़ी में क्यों रह रही हो, तुम किसी राजा के साथ रहने योग्य हो, और ऐसे वनवासी जीवन क्यों व्यतीत कर रही हो। मुझे आश्चर्य होता है, बार बार वर्णन करो, तुम कौन हो, क्या हो, अपना परिचय दो, ये बातचीत चालू किया, बहुत बोला बहुत बोला। लेकिन सीता जी ब्राह्मण समझ करके, एक साधु समझ करके पहले क्षमा की और अपने परिचय दी कि मैं विदेहराज जनक महाराज की पुत्री हूँ और मेरा विवाह भगवान श्री रामचंद्र से हुआ है, जो महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हमारे ससुर की तीन रानियां थीं, तो उसमें से एक ने हमारे पति को वनवास मांगा और अपने पुत्र भरत को राज्य मांगा, तो हमारे ससुर ने तो कुछ कहा नहीं हमारे पति से, लेकिन अपने पिता की बात को सत्य करने के लिए हमारे पति देव वनवासी बन करके वन की तरफ चले, तो मैं भी उनके साथ आ गई हूँ और साथ में छोटे भाई भी आए हैं। जिस समय वन में मैं आ रही थी उस समय मैं 18 वर्ष की थी, इस तरह से वर्णन कर। और यह भी सीता जी नहीं 18 वर्ष नहीं, वो कह रहे कि जब से राम मेरा विवाह हुआ तो उसके बाद हम वन गमन के समय मैं 18 वर्ष की थी वन में आते समय, और इसके बाद मैं इधर आई हूँ, यही मेरा परिचय है, और हमारे पति देव मृगया के लिए गए हैं, उनके साथ उनके भाई भी गए हैं। हे ब्राह्मण देवता, हे जती महाराज, आप यहाँ रुकिए तो हमारे पति देव बहुत भोजन की सामग्री लेकर के आएंगे, कंद मूल फल, तो मैं आपको दूंगी खाने के लिए, और घर में अभी जो है वो मैं आपको दे रही हूँ खाने के लिए, इसको खाइए। हमारे पति देव हमारे देवर के साथ लाएंगे बहुत से फल कंद मूल, तो मैं आपको दूंगी, और कृपया करके आप अपना परिचय देंगे कि आप किस आश्रम के हैं, कौन संप्रदाय के हैं, कहाँ से आए हैं। स्वाभाविक जिज्ञासा साधु के प्रति होती है, लेकिन ये साधु नहीं था, ये तो महागुंडा खल था वास्तव में, तो उद्भेष केवल धारण किया था। तो रावण इतना सुनते ही ठठा करके हंसा और कहता है, मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, मैं कोई परिव्राजक नहीं हूं, तुमने सुना है रावण नाम। तो सीता जी रावण नाम सुनते ही कांप गई, क्योंकि रावण बहुत प्रसिद्ध था। रावण जब चलता था ऐसे धूप में तो सूरज चंद्रमा की तरह कूलिंग लाइट देना चालू कर देते थे, रावण के ऊपर तीखा प्रकाश नहीं डाल सकते थे सूर्य, इतना प्रताप था रावण का, मतलब एकदम एयर कंडीशन्ड। सूर्य में हिम्मत नहीं थी कि वो तीखा प्रकाश दे, चंद्रमा के समान शीतल बन जाते थे, और चलता था तो नदी की धारा रुक जाती थी डर करके, धीरे धीरे बहती थी, और वृक्ष जो हिलते थे हवा में भी सन्न हो जाते थे, हवा का चलना फिरना बंद हो जाता था, इतना प्रताप रावण में था। तो सीता जी ने जब रावण शब्द सुना तो कांप गई, कहा जानते हो मैं रावण हूं, तुमने मेरा नाम सुना होगा, और कुबेर मेरे भाई है, कुबेर के राजधानी लंका को मैं छीन लिया हूं, और उनका प्रसिद्ध विमान पुष्पक भी छीन लिया हूं, अब यही सब अपनी साबसी दिखा रहा है। और सुनना चाहते हो, मैंने अपने हाथ से कैलाश पर्वत को उठाया कि कितना भारी है, तौल रहा था, और उसी कैलाश पर भगवान शिव पार्वती के साथ बैठे शोभा दे रहे थे, ये मेरा प्रताप है। मेरा धन कितना है कि तुम लंका जब चलोगी ना, और सीता जी तो कांप गई, जब लंका चलोगी तो देखोगी वहां का फर्श, वहां की दीवार, चहरदीवारी सब गोल्ड है, सोना है, समझे, और तुम इस भिखारी राम के साथ जंगल में दुख भोग रही हो। मैं बहुत काल से प्रतीक्षा कर रहा था कि तुमको लंका ले चलूंगा, और हमारी हजारों प्रेमिकाएं हैं, पत्नी तो कह नहीं सकता था, और वास्तव में हजारों लड़कियों का अपहरण करके लाया था, बड़ी आने से निज बाहुबल बहु सुंदर बरनार, अपनी भुजा से जहां सुनता था सुंदर स्त्री बस अपहरण करके लाता था, तो मैं उन सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा, और तुम्हारा मैं अपहरण करने आया हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे स्वीकार करो अपने पति के रूप में, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, ये वनवासी राम तुम्हारे लिए क्या करेगा, इसके पास न एक पैसा है न घर है, ये पत्तों की बनी हुई कुटिया में कितने दिन रहोगी, तुमको मैं सब तरह से खुश रखूंगा, मंदोदरी तक को तुम्हारी दासी बना दूंगा, तुम हमारी बात सुनो और चलो मेरे साथ। अब तो इतनी बात सीता जी ने सुना तो कहने लगा, अरे दुष्ट कहीं के, जैसे कोई सियार सिंह का भाग लेना चाहता है वैसे तुम साहस कर रहे हो, तुम नहीं जानते हो कि राम में कितना प्रताप है, लगी फटकारने, राम अगर कुपित हो जाए तो सारे देवता भी उनका पराक्रम नहीं सह सकते हैं, एक क्षण में सबको मार सकते हैं, तुमको पता नहीं, दुष्ट कहीं के रुको और अभी वे आ रहे हैं नीच कहीं के, तुम्हें बात बोलने में शर्म नहीं आ रही है। उस समय भी सीता जी कहती हैं कि मैं पर्वत से गिर जाऊंगी, मैं आग में जल जाऊंगी, विष खा लूंगी, लेकिन राम की ही बाहों में मैं आ सकती हूं और किसी की नहीं, और तुम्हें मैं अब क्षमा नहीं कर सकती हूं, मैं अपने पति देव से कहूंगी कि इस दुष्ट का वध कर दीजिए, ये सन्यासी नहीं है, ये नहीं। तो रावण अब तो सन्यासी रहा भी नहीं, इतना कह करके रावण विकराल रूप दिखाया, एक सिर से 10 सिर हो गए तुरंत, 2 भुजा से 20 भुजा दिखाई पड़ी, बहुत विकराल। सीता जी तो अब तो छटपटाने लगी, रोने लगी, उसके पहले क्या हुआ था कि सीता जी बाहर आ गई थी कुछ देने के लिए भोजन की सामग्री, वो रावण बैठा था रेखा से बाहर, और सीता जी ने कहा कि आइए ले लीजिए भिक्षा ले लीजिए, तो कहा नहीं, जहां आसन लगा देता है साधु लगा देता है, अब यहां से उठ नहीं सकते, बार बार आसन नहीं बदलेंगे। अरे बाप रे, तो सीता जी को बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि उनके देवर ने रक्षा रेखा खींचा है, अब वो गई कुछ भिक्षा देने के लिए, तब तक तो बाएं अपने बाएं बांह से, मतलब इधर तो 10 बांह थी ना बाएं, उससे केस पकड़ लिया सीता का, तो वास्तव में स्त्री के लिए उसका केस पकड़ लेना बहुत भारी कंट्रोल है, अब वो कहां जाएगी, अपनी ग्रिप में आ गई, केस पकड़ लिया, केस पकड़ करके और श्री सीता के नीचे जांघ के नीचे अपनी दाहिनी भुजा लगाकर टांग लिया, इतना निर्लज्ज व्यक्ति, टांग करके और चल दिया। उसी समय उसका रथ प्रकट हुआ जिसमें घोड़े गधे जुते थे, वो दिव्य रथ था, उस पर बैठाया और चल दिया। अब सीता जी हा प्रियतम हा नाथे रघुनंदन विलाप करने लगे, बाद में रो रो करके कहने लगे कि हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोष है, हाँ लक्ष्मण तुमने जो तुमको जो मैंने कठोर वचन कहा भगवान ने उसी पाप का फल दे दिया, ये किया वो किया, बहुत तरह से विलाप करने लगी। वो जा रही थी विलाप करते करते बीच में जटायु मिले, रक्षा का प्रयास किए, रथ भी तोड़ दिए, गधे भी मर गए थे उनके चोंच से, तो वहाँ पर बहुत युद्ध का निशान बना हुआ था बीच बीच में। तो इस तरह से वो सीता जी को ले जा रहा था, अंत में सीता जी वहां पहुंची पंपा सरोवर के पास ऋषिमुख पर्वत पर, तो वहां पर उन्होंने देखा कि पांच बानर बैठे हैं पर्वत के बिल्कुल शिखर पर, उसमें सुग्रीव जी थे और हनुमान जी और भी बानर थे। तो सीता जी अपने उत्तरीय को रेशमी एक चादर ली थी, उसमें अपने कान के गहने, पैर के गहने नूपुर और हाथ का कंगन, ये तीनों निकाल करके और उसमें लपेट करके और एक झाड़ी पर फेंक दिया बानरों के पास, वो इस आशा से कि कभी हमारे प्रियतम श्री राम को मेरा उद्देश्य मिलेगा, मेरा पता मिलेगा ये सब चीज देख करके। और उन्होंने उस समय निकाली जबकि रावण बहुत डरा हुआ था, रावण बहुत भय में था, बहुत व्याकुल था, जटायु जैसा पक्षी भी उसको बेदम कर दिया था, ये बाद में तलवार से पंख काट दिया था जटायु का, तो उन वो बेहोश होकर गिर गए थे। तो रावण उस समय नहीं देखा कि सीता अपने कान का कर्णभूषण और हाथ का गहना पैर का गहना निकाल करके फेंक रही है, रावण देख नहीं पाया। सीता जी बहुत ट्रिक से निकाले कि रावण जब भय में था, रथ हांक रहा था, जा रहा था, उसी समय फेंक दिया पीछे से ऐसे, तो उसको सुग्रीव जी ने देखा था इन तीनों गहनों को, और ऐसे जगह सीता जी ने फेंका कि पत्थर पर ना गिरे, चूर्ण ना हो जाए, टूट ना जाए, तो झाड़ी पर फेंक दिया, तो लोग जाकर के उठा लाए। अच्छा, तो सुग्रीव जी ने भेजा हनुमान जी को कि जाइए देखिए क्या है, तो हनुमान जी लाए थे, तो सुग्रीव उन तीनों गहनों को रख दिए से सुरक्षित। भगवान श्री राम जब आए, उनके साथ मित्रता हुई, तो सुग्रीव जी ने कहा कि एक स्त्री विलाप करती हुई जा रही थी और उसका गहना गिरा है, तो आप जरा पहचानिए देखिए किसका है। भगवान ने कहा कि लाओ लाओ जरा गहना देखना चाहता हूं, तो ला करके दिखाए, भगवान तो पहचान गए कि सीता का गहना है। पूछे लक्ष्मण से कि लक्ष्मण ये सीता का है ना, लक्ष्मण जो उस समय जो वाक्य बोले हैं, वास्तव में उस समय पता चलता है कि लक्ष्मण जी कितना जितेंद्रिय, कितना महात्मा थे। वे कहते हैं कि मैं केयूर को नहीं जान रहा हूं, बाजूबंद में नहीं पहचान रहा, कुंडल नहीं पहचान रहा, नूपुरम नूपुरो उत्तभिजा नामी नित्यम पादाभिवंदनात्, मैं चूंकि रोज सीता जी को प्रणाम करता था इसलिए मैं चरण के नूपुर को पहचान रहा हूं कि उनका है, मैंने बाजूबंद देखा ही नहीं आज तक, इतने वर्ष तक सीता के साथ रहे हैं लेकिन सीता के बांह पर नहीं देखे थे लक्ष्मण जी और मुख पर नहीं देखे थे कभी भी, तो कुंडल उन्होंने कहा मैं कुंडल नहीं पहचान रहा हूं और बाजूबंद भी नहीं पहचान रहा हूं, हाँ नूपुर पहचान रहा हूं उन्हीं का है। इस तरह के जितेंद्रिय लोग हुए हैं संसार में, खास अपनी भाभी है, लेकिन भाभी को भी मुख नहीं, भाभी का भी मुख नहीं देखा। इस तरह का धर्म का पालक होना चाहिए वास्तव में समाज में। कितना उन्नत थे उस समय के लोग, कितने महान थे कि अपनी भाभी के चरण को छोड़ करके उसके हाथ पर, उंगली पर या मुख पर लक्ष्मण जी नहीं देखे थे। तो भगवान उस गहने को पा करके हृदय से लगाए कि हाँ है, सीता का है, और उन्हें पता इसके पहले चल गया था कि दक्षिण दिशा में वो लेकर के गया, रावण हर करके ले गया है, क्योंकि जटायु जी ने पूरा पूरा बता दिया था कि रावण हर करके ले गया है सीता को। तो इस तरह भगवान श्री राम जब आश्रम में आए अब वहां से जो 10 अध्याय में उन्होंने विलाप किया है, इतना दुखी, एविधि खोजत बिलपत स्वामी मनु महाबिरही अति कामी, ऐसा लग रहा था कि ये महाबिरह में है, महाबिरही और महाकामी व्यक्ति है, जो स्त्री के बिना जी ही नहीं सकता। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण तुम जाओ, अयोध्या लौट जाओ, मैं तो नहीं जी सकता हूं, मेरे मरने के बाद तुम अयोध्या लौट जाना और जा करके मेरी माता को सुनाना कौशल्या को कि सीता को इस तरह से राक्षस खा गए। अभी खाए नहीं है, लेकिन श्री राम अतिशय प्रीति के कारण, स्नेह के कारण यही कह रहे हैं कि खा गए। यहां तक वर्णन करते हैं उसका कंठ जो कंठाभरण से युक्त था, वो राक्षस उसको खा गया होंगे, उसमें से खून चू रहा होगा, उसकी सुंदर बाह को खा गए होंगे, उसके पेट को खा गए होंगे, चरण को खा गए होंगे। हाय हाय हाय, मैंने अपने वास्तव में पति का फर्ज पूरा नहीं किया, मैं सीता को लेकर के वन में आया और इस तरह से उसे राक्षसों के हवाले दे दिया। लक्ष्मण जी बार बार समझाते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, सीता कहीं भी होगी वो आपको मिलेगी, और भैया मुझे विश्वास है कि सीता को कोई खा नहीं सकता है, क्योंकि वो खाने के पहले ही हो सकता है कि वो शरीर त्याग दे, किसी के पकड़ में नहीं आएगी। तो भगवान कहते हैं वही तो मैं कह रहा हूं कि खा गए होंगे, ये मुझे विश्वास है लक्ष्मण कि सीता किसी का स्पर्श नहीं स्वीकार कर सकती है, वो मर जाएगी, किसी के बस में ऐसे नहीं हो सकती है। तो इसीलिए भगवान बार बार कह रहे थे कि उसको राक्षस खा गए होंगे। अब मैं कौन सन्न हूं लेकर के अयोध्या जाऊंगा, महाराज जनक जब पूछेंगे सीता का समाचार तो मैं क्या बताऊंगा उनको, मेरा क्या मुख रहेगा कुछ समाचार सुनाने का, इसलिए मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। मैं जो भी मुझे पता है पूरा पूरा चल जाएगा कि खा गए सीता को, तो मैं उसी दिन मर जाऊंगा, मैं जी नहीं सकता हूं, मैं सीता के बिना जीने की कल्पना ही नहीं कर सकता। वे आश्रम में ढूंढे चारों तरफ तो कहते हैं देखो ये आश्रम रो रहा है, आसपास के जो हरिण हैं ये भी बड़े खिन्न हैं, रो रहे हैं, इसके द्वारा यही सिद्ध होता है कि सीता को निश्चित कोई राक्षस खा गया, और पास के वृक्ष भी बहुत खिन्न है, ये है वो है। फिर चलते चलते भगवान कहते हैं देखो लक्ष्मण, यही वह स्फटिक शिला है, यही वह पत्थर है जिस पर मैं अपनी प्रिया के साथ बैठता था और हंस हंस कर बातें की थी, और तुमको याद है तुमसे भी कितना एक बार उसने बहुत परिहास की बात कहा था, जोक्स कहा था, ये कहने का आशय है, यही वो पत्थर है। भगवान उस पर ऐसे विकल होकर के गिर गए उस पत्थर पर, सीता उस पर बैठी थी तो बहुत प्रिय लग रहा था। फिर कहते हैं कि इस वृक्ष के आड़ में कभी कभी छिप करके हमसे आंख मिचौनी खेली थी कि आप पकड़िए, तो उसकी एक ही पहचान थी कि उसके ऊपर पीला कपड़ा था रहता था। और लक्ष्मण चलो गोदावरी के निकट, कभी कभी वो पानी भरने जाती थी गोदावरी में घाट पर, लेकिन मेरे बिना अकेले कभी नहीं गई है, तो अकेले कैसे गई होगी। कभी कभी भगवान ये सोचते हैं कि गोदावरी नदी के तट पर छिप कर बैठी होगी कि हमारे पति हमको खोजते हुए आएंगे, भगवान ये कह रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा उसने नहीं किया कि वो अकेले गई। फिर कहते हो सकता है कमल लेने के लिए गई हो, लेकिन फिर वही कहते हैं कि ऐसा तो अकेले कभी किया नहीं। तो जाते हैं गोदावरी के तट पर, कहते हैं हे माँ हे गोदावरी, सीता कहाँ है, वो तुमसे बहुत प्रेम करती थी, तुमको जरूर पता होगा, मुझे बताओ, वो किसी भी व्यक्ति की पकड़ में गई होगी, मैं उसको नष्ट करके सीता को लौटा लूंगा, मेरे क्रोध को सारा जगत भी मिल करके प्रतिकार नहीं कर पाएगा। फिर क्रोध आया, क्रोध में कहते हैं अगर सीता मुझे नहीं मिली तो मैं किसी भी देवता को उसके स्त्री के साथ नहीं रहने दूंगा, मैं सारे जगत को एक ही बाण से भस्म कर दूंगा। यदि मैं सीता के साथ नहीं रहूंगा तो कोई भी व्यक्ति, चाहे गंधर्व हो, देवता हो, नाग हो, असुर हो, कोई भी अपने पत्नी के साथ नहीं रह सकता। इतना क्रोध आ रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं, आपको क्या हो गया? अपराध किसी एक ने किया है और आप सारे जगत का वध करना चाहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप इतिहास की याद कीजिए, बड़े बड़े लोगों पर विपत्ति आ जाती है पर वो धैर्य रखते हैं। महाराज जजाति भी स्वर्ग से गिरे थे, आपको याद है ना? कितने पुण्यात्मा थे, कितने धर्मात्मा थे, लेकिन इनको एक दिन स्वर्ग से गिरना पड़ा था। सुरपुर पे जम खसो जजाति, और चंद्रमा और सूर्य पर भी राहु अटैक करता है, एक दिन उनका तेज फीका हो जाता है, लेकिन वो धैर्य रखते हैं, कुछ ही क्षणों के बाद फिर प्रकाश आ जाता है उनमें। तो इस तरह से सीता का हरण होना कोई ऐसा काम नहीं है कि पहले नहीं हुआ है। ये भगवान कहते हैं, लक्ष्मण मैं निश्चित बहुत बड़ा पापी व्यक्ति हूँ, निश्चित बहुत बड़ा पापी हूँ। मेरा राज्य गया, मेरे पिताजी मर गए, मेरी माताएं मुझसे बिछुड़ गई, भाई भरत का संग छूट गया, फिर मैं किसी तरह से वन में आया, लेकिन वन में आने पर हमारी पत्नी इस तरह से राक्षसों के द्वारा खा ली गई। मैंने निश्चित ही पूर्व जन्मों में बहुत बड़ी इच्छा कर करके बहुत बड़ा पाप किया है, जानबूझ करके एक एक पाप कई बार किया, इसीलिए कुफल आ रहा है मेरे सामने। इसके द्वारा मानो भगवान यह शिक्षा दे रहे हैं कि इस जीवन में अगर किसी पर कोई विपत्ति आती है, संकट आता है, तो उसी के पूर्व जन्म के किए हुए पाप का फल है। यह एक प्रकार की शिक्षा है। वास्तव में भगवान राम के लिए ऐसी बात नहीं थी कि वो पहले बहुत पाप किए थे और ये विपत्ति आ रही है, ये तो इनकी योजना से सीता का हरण हुआ है ना, और वास्तविक सीता का हरण हुआ नहीं है, नकली सीता का हरण हुआ है। लेकिन भगवान यह दिखा रहे हैं कि जो व्यक्ति इस मनुष्य जीवन में स्त्री में इस प्रकार से आसक्त होता है तो उसको यही दुख का दिन देखना पड़ता है। स्त्री रखना ठीक है, विवाह करना ठीक है, लेकिन सारी आसक्ति मति गति स्त्री में ही डाल देने से केवल दुख भोगना पड़ता है व्यक्ति को, कोई सुख नहीं मिलता है। यही भगवान शिक्षा दे रहे हैं, बहुत दुख उठाना पड़ता है। तो कई तरह से विलाप करते हैं, 10 अध्यायों में विलाप का वर्णन है। फिर सीता के अंगों का वर्णन करने लगते हैं, सीता के द्वारा प्रेम से की गई सेवा का वर्णन करने लगते हैं। देखो अबला सीता वन के दुख को कुछ भी नहीं गिनती थी, मेरे साथ रहती थी तो कितना आनंद में थी, वो कभी नहीं ये देखी कि ये पत्थर है, ये कांट है, ये कुश है, और खाने को कंदमूल फल मिल रहा है, सोने को जमीन मिलता है, कभी विचार नहीं कि वो मेरे साथ इतना सुखी थी, इतना सुखी थी। ऐसी स्त्री की मैं रक्षा नहीं कर पाया, मैं नालायक, मैं निर्लज, मेरा धर्म था उसकी रक्षा करना, लेकिन मैं रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए मैं नहीं जी सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। इस तरह से भगवान रो रहे हैं। लेकिन तनिक विचार कीजिए किसी व्यक्ति के लिए, वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे, लेकिन सामान्य मनुष्य अगर इसी तरह से अपनी पत्नी के लिए रोवे तो कितने बड़े दुख की बात है, उसका जीवन कितना दीन और कंडम है, कोई स्त्री के लिए इस तरह से रोए। अरे रोना है तो कृष्ण के लिए रोना चाहिए ना, भगवान के लिए रोना चाहिए। और स्त्री रहती कितना दिन है, विवाह के पहले थी नहीं है ना, विवाह के पहले भी तो जी रहे थे ना, और आनंद से जी रहे थे, कोई चिंता नहीं थी। और कुछ ही वर्षों के बाद जब यौवन शिथिल हो जाता है, जवानी चली जाती है, तो आदमी का आकर्षण भी चला जाता है उस तरह से, और इसके बाद भी मरने पर अकेले ही जाना है, ऐसा नहीं कि दोनों हाथ पकड़ कर एक साथ मरेंगे और जाएंगे एक ही जगह, अलग अलग डेट होगा एक्सपायरी का, अंततः संग छूट जाएगा। पहले भी संग नहीं था, बाद में भी संग छूट जाएगा, तो बीच में मरने के लिए क्यों जाल स्वीकार किया जाए, बताइए। यदि मान लिया जाए कि नहीं स्त्री आवश्यक वस्तु है तो आवश्यक है तो उसे बुद्धिमानी पूर्वक सहवास करना चाहिए, रहना चाहिए, फंस नहीं जाना चाहिए। बहुत अनाशक्ति पूर्वक ध्यान से जब जो फंसने का विषय होता है उसे बहुत सावधानी से रहना चाहिए। आग बहुत उत्तम वस्तु है, उसे भोजन बनता है, फैक्ट्री चलती है, लेकिन कभी कभी भूल से आग लग जाती है तो भोजन बनाने के बदले पूरा घर ही बनाने लगती है आग। तो गलती होती है ना, किसी न किसी गलती से आग लग जाती है। तो इस प्रकार मनुष्य को स्त्री रखना चाहिए अगर गृहस्थ है, बनना चाहता है, लेकिन बहुत सावधान, कहीं उसमें आसक्त होकर के कृष्ण को नाम भूल जाए, नहीं तो फिर नरक के अलावा और कोई गति नहीं रहती। मरने के बाद तो नरक मिलेगा ही, इस जीवन में भी नरक से भी ज्यादा दुख मिलता है, बहुत ज्यादा दुख मिलता है। देखा हूं अगर स्त्री में अत्यधिक आसक्त व्यक्ति है तो मैं देखा हूं कि उसकी प्रेमिका या उसकी पत्नी अगर दूसरे से बात करती है तो मरने लगता है, क्यों दूसरे से बात कर रही है, देखा जाता है ऐसा, क्यों दूसरे को फोन की, क्या मैं मर चुका हूं, इस तरह से बोलता है आदमी, क्या मैं मर चुका हूं, अरे तुम जीवित हो तो क्या कंट्रोलर हो गए दुनिया के, ईश्वर नहीं हो ना। लेकिन व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि ये इसकी गति मति चित्त की धारा केवल मुझ में रहे और रह नहीं पाएगी, रहने का कोई प्रश्न नहीं है, आज के युग में तो और नहीं रहेगा। आप जाइए ऑफिस में, स्त्री घर में टीवी ऑन करके दूसरे पुरुषों को देखा करती है ना, टीवी में तो आपका ही चित्र आ नहीं रहा है तो दूसरे का आ रहा है, और वैसा आ रहा है सब हृदय के भावों को ही प्रैक्टिकल दिखाते हैं, इस तरह से आ सकते, इस तरह से आ सकते, इस तरह से। तो सबसे बुद्धिमानी यही है ना कि स्त्री में आसक्ति न की जाए, ठीक है, काम निकालना है, उसे रहना है साथ में, घर को संभालना है, बच्चों की सेवा करनी और सब करना है, लेकिन बिल्कुल मन फ्री रखना चाहिए, वही व्यक्ति सुखी है। भगवद्गीता में श्री भगवान कहते हैं सकनो तिहाई वह यह सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवन बेगम स युक्त स सुखी न रह। कौन सुखी है इस संसार में, कौन युक्त है, ठीक है। भगवान कहते हैं कि शरीर छूटने से पहल मतलब जवानी में ही अगर कोई काम और क्रोध के उठे हुए वेग को सह सकता है तो वही सुखी है, वही ठीक है। अगर काम का वेग है, क्रोध का वेग है और अपने विषय को खोजने लगे, वो किसी को मारे, गाली दे या किसी स्त्री की कामना करने लगे अपने काम को सेटिस्फाई करने के लिए, तो सब दुखी, सब अजुक्त नर, वही दुखी है वास्तव, वो सुखी नहीं है। कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बहुत चतुर हूं, अपने को चतुर मान करके वह मूढ़ बुद्धि व्यक्ति किसी मधुर भाषणी अबला का उपभोग करता है, किसी स्त्री को भोगता है, वो सोचता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, और वह बोलने में इतना मधुर बोलती है कि उसका कान तृप्त हो जाता, तो केवल मधुर भाषणी बाकी हृदय में हलाहल भरा रहता है, ये शास्त्र कहता है। पर मूर्ख व्यक्ति स्त्री के इस स्वभाव से अनभिज्ञ होता है और उस तरह से स्त्री में जल कर मर जाता है जैसे फतिंगा अग्नि शिखा में जल करके मर जाता। देखा है आपने बरसात के दिन में आग जलती है या दीपक की शिखा होती है तो कितने फतिंगे उड़ उड़ करके आते हैं, वो जानते हैं कि ये दीपक की शिखा हमारे लिए बहुत आनंद की चीज है, मैं इसका स्पर्श करूंगा सुखी हो जाऊंगा, है ना, लौ उठती है दीपक की कितना पीला पीला अच्छा अच्छा, तो फतिंगा यही सोचता है कि मैं उड़ूंगा, आलिंगन करूंगा, आलिंगन करूंगा, आलिंगन करते ही पंख जल जाता है, छटपटा करके मर जाता है। ये हालत मनुष्य के संसार में है और सबसे बड़े दुख का कारण स्त्री है, सबसे बड़े दुख का कारण उसकी मति को नष्ट करने वाली, भगवान से विमुख करने वाली। इसीलिए भगवान श्री राम ये रो रो करके शिक्षा दे रहे हैं, मर्त्यावतारस्तु हि मर्त्य शिक्षणम्, तो वहीं पर लक्ष्मण जी हैं, उनको कोई इस तरह की छटपटाहट नहीं, भगवान राम को समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन भगवान राम ये बता रहे हैं कि जो इस तरह से असक्त होगा हाय हाय छाती पीटेगा, रोएगा, कभी चलते चलते बैठ जाते थे, लक्ष्मण से कहते लक्ष्मण चक्कर आ रहा है, पानी लाओ पानी लाओ, तो लक्ष्मण जी तरकस में पानी लाते थे, कमंडल मंडल भी भूल गया था कहां सीता के विरह में, पता ही नहीं, लोटा गिलास सब छूट गया तो लोटा गिलास तो था नहीं, कमंडल था, लौकी की तुमड़ी रहती थी, वो भी टूट फूट करके गिर गए। तो तरकस में लक्ष्मण जी पानी ला करके राम के मुंह पर छींटा देते थे, पिलाते थे, तब होश में आते थे, होश में आने के बाद फिर हा सीता हा सीता हाय हाय हाय, क्या चला गया था राम के जीवन से। तो सुखदेव गोस्वामी हनुमान जी कहते हैं कि स्वयं आत्मन रमित, अपने ही स्वरूप में भगवान रमण करते हैं, उन्हें किसी स्त्री की, किसी भोजन की, किसी शब्द आदि की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप आनंद से पूर्ण है। जैसे सूर्य अपने आप प्रकाश और तेज से युक्त है, सूर्य को कोई जरूरत नहीं कि बाहर से दीपक की सहायता ले या अग्नि तापे कि हमको जरा ठंडा, हमको थोड़ा गर्म लगना चाहिए, सूर्य को इसकी जरूरत नहीं है। सूर्य से तो कोटि कोटि लोग उष्मा पाते हैं, गर्मी पाते हैं, वो क्या एक अग्निखंड को तापेगा गर्मी के लिए। तो इसी तरह से भगवान श्री राम तो अपने स्वरूप के आनंद से परिपूर्ण, उनको क्या जरूरत है किसी स्त्री से सुख लेने की, किसी शब्द को सुनने की या किसी खाने की चीज की। लेकिन फिर भी मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षण, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए ये लीला की जा रही है मर्त्यावतार, यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, जैसा श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान ने शिक्षा दिया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री है, पति के सुख दुख को ही सब कुछ जानती है, पति की सेवा को ही अपने जीवन का धर्म समझ चुकी है, लक्ष्य समझ चुकी है, तो ऐसी पत्नी की सब तरह से रक्षा करना पति का धर्म है। भगवान राम शिक्षा दे रहे, सीता का हरण हो गया, राक्षस रावण ले गया, लेकिन भगवान अपनी पूरी शक्ति से सीता का पता लगाए, और पता लगाते लगाते अंत में समुद्र पर सेतु बांध करके भी सीता की रक्षा की, सीता को छुड़ा करके ही लाए। क्या वो स्थिति थी कि सीता वहां से लौट सकती थी, सारा राक्षसों का नगर था जहां धर्म की कोई बात नहीं थी, वहां सीता रखी गई थी, पर भगवान जानते थे कि ये पतिव्रता स्त्री है, अपने पति के अतिरिक्त कभी भी स्वप्न में भी किसी पुरुष का चिंतन तक नहीं की है, तो ऐसी स्त्री की रक्षा पति का धर्म है। तो भगवान ने सेना इकट्ठा किया और सब उपाय किया और लंका से अपनी पत्नी को ला दी, तो यह पति का कर्तव्य, यह भी शिक्षा भगवान राम दे रहे हैं। यदि पतिव्रता स्त्री है तो उस पर कोई भी संकट न आने पावे, अगर आवे भी तो पति का धर्म है कि उसको संकट से मुक्त करे, बीमार पड़े तो उसकी दवाई करावे, उसकी रक्षा करे दूषित लोगों से, और उसे घर दे, गहना दे, संतान दे, सब तरह से उसे पुष्ट करना चाहिए, यह एक फेज है। और श्रील प्रभुपाद जी दूसरा फेज विरक्त भक्तों के लिए कह रहे हैं, प्रभुपाद जी उसमें लिखे हैं, चक्रवर्ती पाद लिखते, यदि ब्रह्मचारी है और यदि वो विरक्ति के पथ पर चलना चाहता है तो भगवान श्री राम की दुर्दशा देख करके भिनक जाना चाहिए, अरे बाप रे बाप, इस तरह से मरना पड़ेगा है तो समर्थ भगवान राम को तो बहुत बड़ा ज्ञान है, मतलब मनुष्य की दृष्टि से भी देखे बहुत बड़ा ज्ञान, संसार को, ईश्वर को, सबको समझे थे। और जो व्यक्ति देह को ही मैं मानता है, देह के सुख को ही सब कुछ जानता है, अगर वह एक बार स्त्री में आसक्त हो जाए तो इस जीवन में मुक्त नहीं हो सकता है। ये महाराज पुरुवा का अनुभव है भागवत में, वे कहते हैं पुष्चल लाप हृतम चित्तम कुनन्यो मोचितुम प्रभु आत्मा रामेश्वरम रीते भगवंतम अधोक्षजम। अगर किसी व्यक्ति का चित्त किसी स्त्री में चला गया तो अब भगवान कृष्ण के अलावा उसके चित्त को मुक्त कोई नहीं कर पाएगा, सारे देवता मिल करके सारे मनुष्य साधु संत मिलकर के भी उसके चित्त को मुक्त नहीं कर सकते। एक ही व्यक्ति कर सकता है मुक्त, जो सबके हृदय में परमात्मा रूप से भगवान रहते हैं, क्योंकि उनके हाथ में स्विच है, वो ऑफ कर देंगे बस ठीक हो जाएगा। बाकी लोगों के लाख उपदेश विचार कुछ भी कीजिए, आदमी स्त्री की आसक्ति को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। ये शास्त्र का शोधित निर्णय है, पर विचार करने की जरूरत नहीं, नहीं नहीं मुक्त हो सकते हैं, ये हो नहीं हो सकते। भगवान जब कृपा करके चित्त को स्त्री से हटाएंगे तब तो हट सकते। तो भगवान श्री राम ये शिक्षा दी है अपने दुख को दिखा करके, नहीं तो कुतः उनको कहाँ दुख है। जो अपने आत्मा राम आत्मा में स्वरूप में रमण करते हैं, उनको सीता जाए मरे कुछ भी हो इसे उनको क्या मतलब है। प्रभुपाद जी कहते हैं चाहे तो हजारों सीता को एक सेकंड में पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की शक्ति है सीता। तो भगवान को कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मनुष्यों को शिक्षा देना था, ये उद्देश्य था भगवान का। तो भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं उसको ग्रहण करना चाहिए। यदि गृहस्थ है तो उसको बड़ी सावधानी से स्त्री का सेवन करना चाहिए। यह नहीं कहा जा रहा है कि अब तब आज से ही घृणा चालू कर दे, प्रेम से बोलना छोड़ दे, ये वो छोड़ेगा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि ये एक घंटे का लेक्चर उसको बिल्कुल शुद्ध कर देगा, परंतु भगवान की भक्ति में यदि है वो गृहस्थ तो ठीक है, स्त्री को रखे ढंग से रहे, लेकिन अटैच्ड ना हो, अटैच्ड ना हो। बंगाल में कहावत है कि पानी का स्पर्श न करे लेकिन पानी के भीतर रहने वाली मछली निकाल ले। तब जानते हैं बंसी होती है, बंसी जिसको कहते हैं, तो आदमी तट पर बैठा रहता है और बंसी को ढीलता है, उसके उसमें एक रस छड़ी होती है, लगी होती है छड़ी, उसके सिरे पर एक डोरा बंधा होता है, उसके नीचे अंकुश लगा रहता है लोहे का, और बीच में एक इंडिकेटर होता है मूंज का बना हुआ हल्का। कोई मछली जब फंस जाती है तो डूबने लगता है, पानी खींच लेता है मछली को, बाहर आ जाती है। पानी के भीतर रहने वाले मछली को खींच लिया पर पानी का स्पर्श नहीं किया, ये बुद्धिमानी। ठीक है स्त्री का सेवन करे रखे क्योंकि सहधर्मिणी है, वास्तव में मनुष्य जीवन का एक पहलू है, जैसे दो पहिए पर गाड़ी चलती है तो वो एक पहिया है, परंतु बहुत सावधानी से, नहीं तो उस पहिए में ही कुचल जाएंगे। बहुत सावधानी से रहने की जरूरत। तो दोनों भगवान की भक्ति करें, स्त्री पतिव्रता बने, पति से प्रेम करे, और कोई किसी को सुंदर या धनी या किसी तरह से सफल देख करके उसके तरफ चित्त न ललचाए। सीता के द्वारा शिक्षा मिलती है, कितना लुभावना प्रदेश था वो सोने की लंका, रावण जैसा सुंदर अपनी माया से कुछ कितना भी सुंदर बन सकता था, परंतु सीता जी ने देखा तक नहीं रावण पर कभी। त्रिधर वोट कहत वै दे सुमरी अवधपति परम से नहीं, तव असी कंठ सो भुज कंठ की तव असी घोरा सुन सठ अस प्रवान पनमोरा। रावण ने कहा कि देखो अगर एक महीने में तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो इस तलवार से तुम्हारा गर्दन उड़ा दूंगा। तो सीता जी कहते हैं ठीक है देखो मेरे कंठ में राम की भुजा आएगी, वही मेरा आलिंगन कर सकते हो, और नहीं तो तुम्हारा तलवार, इन दो में से एक होगा। मेरे कंठ का स्पर्श तुम्हारी तलवार करेगी, नहीं तो राम की भुजा, तुम्हारी भुजा इसमें नहीं आ सकती। और रावण में इतना साहस नहीं था कि वो सीता जी को छू दे इस तरह से काम भाव से। रावण को साप दिया गया था कि अगर कोई स्त्री को तुम अनुकूल भाव से स्वीकार करोगे तब तो तुम ठीक से जीवित रहोगे, और बलात्कार करोगे तो तुम मर जाओगे। इसीलिए सीता जी को बहुत कठोरता से व्यवहार नहीं कर रहा था, केवल मनाना चाहता था, मनाना चाहता था। मंदोदरी आदि को नियुक्त किया था कि तुम लोग मनाओ मनाओ, लेकिन नहीं माने। तो इस तरह से सीता जी के आचरण से सीखना चाहिए कि हमें पतिव्रता होना है, और पति को चाहिए कि अपनी पत्नी की रक्षा करे, अन्य स्त्रियों के प्रति मन को धारित न करे और अपनी पत्नी में भी उसके रूप आदि के प्रति ज्यादा आसक्त न हो, भगवान में मन रखे। ये शिक्षा भगवान श्री राम ने अपने लीला द्वारा दिया है, जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अपनी ही दुर्दशा दिखाकर भगवान ने सिखाया, सावधान किया मनुष्य जाति को। तो मैं तो यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि बोट फेस्टिवल है मंदिर में। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।